मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 1 सितंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सब ने एक कहावत सुनी होगी और वह कहावत है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। यानी कि जो पानी के जितने गहरे उतरता चला जाता है उसे उतने ही मूल्यवान रत्न मिलने शुरू हो जाते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां, अब आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि केवल खोजने वालों को ही मिलता है। जिन खोजा तिन पाइयां, जो चुपचाप बैठा हुआ होगा उसे नहीं मिलेगा। उसे तो ठीक है, सरफेस पर, सतह पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वही मिलेगा, और सच पूछे तो जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा है और उसने ले लिया है वह भी पूरी तरह से मिला नहीं है, क्योंकि जो चीज उसके हाथ में आई है वह उसके गहरे उतर ही नहीं रहा है। इसलिए आगे की लाइन है, गहरे पानी पैठ, कि अगर आपको खोजना है और खोजकर सही में अमूल्य रत्न हासिल करने हैं तो बहुत जरूरी है कि आप उसके गहरे उतरते चले जाएं, और आप जितने ज्यादा गहरे उतरते चले जाएंगे उतने ज्यादा मूल्यवान चमकीले रत्न आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सच पूछे मित्रों, तो हम लोग कुछ भी फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम एक गीत के गहरे उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरा मकसद भी यही है कि एक गीत के माध्यम से मैं इस कहावत की सच्चाई को आपके सामने रख सकूं। सच पूछे तो कल मैंने खासकर इस गीत के बारे में, अभी मैं उस गीत का नाम नहीं ले रहा हूं, कल मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, जो मुझे प्रतिक्रियाएं मिली और खासकर अमृत नारायण सतपति और सुयेश तिर्की ने जिस भाषा में, जिन भावनाओं के साथ इस गीत के बारे में लिखा, उसने सच पूछे तो मुझे रोमांचित कर दिया। मेरा उत्साह भी जबरदस्त रूप से बढ़ा, यह सोचकर कि नहीं, मैं जो बातें बता रहा हूं यदि उसका जरा भी उपयोग किया गया तो शायद मैं सही ठहराया जाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं अमृत नारायण सतपति और सुयश तिर्की को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बल्कि ज्यादा अच्छा यह कहना होगा कि मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। तो आइए मित्रों, कल हम लोगों ने उसकी पहली परत देखी थी और वह परत थी धुन की, म्यूजिक की। उसके बारे में मैंने कुछ तथ्य आपको बताए थे। यदि आपने गूगल का सहारा लिया होगा तो आपको मुझे लगता है कि जानना ही चाहिए कि इतना खूबसूरत संगीत देने वाला वह शख्स कौन है, किसने सच में इतना खूबसूरत संगीत इन गीतों को दिया है कि ये गीत हमारे अंदर इतने गहरे उतरते चले जा रहे हैं। दोस्तों, कभी आप सबने सोचा है कि ये जो म्यूजिक बनाने वाले लोग हैं ये कहां से ये संगीत लेकर के आते हैं, कहां से मिलता है इन्हें, कहां से वो धुन चुरा करके लाते हैं, कैसे वह धुन इनके दिल और दिमाग में पैदा होती है। दोस्तों, इसका संगीत देने का ये जबरदस्त काम जिसने किया है उस शख्स का नाम है AR रहमान। और अगर आप AR रहमान जी के म्यूजिक से परिचित होंगे तो आपको लगेगा कि वो इसी तरह के बड़े धीमी गति वाले संगीत देते हैं, और यही कारण होता है कि इनके संगीत के साथ हम भी यात्रा कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम इसके दूसरी परत पर आते हैं, और इसकी जो दूसरी परत है वह साहित्य की परत है। म्यूजिक की परत हम देख चुके हैं, अब हम साहित्य की परत को देखने की कोशिश करते हैं। दरअसल होता यह है कि भले ही आपको कोई गीत बहुत पसंद क्यों ना आ रहा हो, ज्यादातर मामलों में आप सोच करके देखिएगा कि उसका जो मुखड़ा होता है वो हमें याद हो जाता है और हम उसे ही गुनगुनाते हैं। उसके बाद की जो पंक्तियां होती हैं, सच पूछे तो उन्हें याद करने की हम कोशिश नहीं करते, क्योंकि शुरू का ही मुखड़ा इतना प्रभावशाली होता है कि वो हमारे दिमाग में गूंजने लगता है और उस गूंज के साथ हम अपना कंठ मिलाने लगते हैं। लेकिन आप पाएंगे कि जो शुरू की पंक्तियां होती हैं उनमें साहित्य का सौंदर्य उतना नहीं होता, वो पंक्तियां सामान्य सी ही होती हैं। अगर आप इसी गीत को देखें कि ठहर जाओ, यही है ना कि तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, तो आपको लगेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो यहां जो प्रभावशीलता है इसकी वो किसकी वजह से है, म्यूजिक की वजह से है। लेकिन जब आप इन लाइनों से नीचे उतरने की कोशिश करेंगे, गहरे बैठने की कोशिश करेंगे, तो पहली बार आपका साहित्य के सौंदर्य से साक्षात्कार होगा, आपको दिखाई देगा कि बाप रे बाप, साहित्य का कितना कमाल इसमें किया गया है। और कमाल करने वाले, फिर आपके मन में ये जिज्ञासा होना चाहिए कि यार ये कमाल किया किसने है। दोस्तों, ये कमाल करने वाले शख्स हैं इरशाद कामिल साहब को मैंने दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में सुना है। इरशाद कामिल, जब आप इत्मीनान से उन पंक्तियों को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आत्मसात करने की कोशिश करेंगे और फिर उन्हें थोड़ा सा अनुभव के स्तर पर ले जाएंगे, तो फिर आपके अंदर एक चमत्कार घटित होता हुआ मालूम पड़ेगा कि जैसे अंदर कुछ चमत्कार हो रहा है, कुछ जादू हो रहा है। उनकी कुछ पंक्तियों को देखिए, आइए थोड़े से इन पंक्तियों का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं, बिन बोले बातें तुमसे करूं। अब फिर से गीत सुनिएगा। अगर आप मेरे इन वक्तव्यों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप बार बार गीत को सुने। बिन बोले बातें तुमसे करूं, अरे बिन बोले बातें कैसे हो सकती है? तो जब आप इस पर विचार करेंगे तो लगेगा कि बिन बोले बातें तो केवल वहीं हो सकती है जहां दोनों का दिल बिल्कुल एक जैसा हो जाए। मतलब वेवलेंथ इतने सिमिलर सतह पर आ गई हैं, इतने सिमिलर, इतनी समानांतर स्थिति में बह रही हैं कि बात करने की जरूरत ही नहीं रह गई है। यहां मौन ही सर्वोत्तम भाषा बन गई है, मौन ही सर्वोत्तम भाषा। बिन बोले बातें तुमसे करूं और फिर बैठी बैठी भागी फिरूं। अब आप सोच करके दे, बैठी बैठी भागी फिरूं कि मैं बैठी हुई हूं, शरीर से तो मैं बैठी हुई हूं लेकिन मैं भाग रही हूं। मैं तुम्हारे साथ कहीं द्वीप पर घूमने जा रही हूं, कहीं और बैठी हुई हूं, तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारे साथ ही चल रही हूं, बैठी बैठी भागी फिरूं। दोस्तों, वाक्य के बाद फिर आप शब्दों के सौंदर्य पर जाइए। बैठी बैठी भागी फिरूं, ये जो भागी और फिरूं शब्द है, इस पर फिर थोड़ा सा इसमें डुबकी लगाने की कोशिश कीजिए। दौड़ी दौड़ी फिरूं भी कह सकते हैं, लेकिन जो भागी शब्द में जो रिदम है वो दौड़ने में नहीं है, जो ड है आप देखें ना कि वो थोड़ा सा अवरोध बन जाता है। फिर शब्द है फिरूं। ये फिरूं क्या है, फिरना क्या होता है? अब आप देखिए कि फिरने का मतलब है कि मैं दौड़ तो रही हूं लेकिन दौड़ने के बाद फिर उसी जगह वापस आ जा रही हूं। दौड़ी दौड़ी भागी फिरूं, फिरने का मतलब होता है एक गोल घेरे में ही दौड़ लगाना। लेकिन इस सौंदर्य को हम समझेंगे कब? इस सौंदर्य की झील में हम गोता लगा कब पाएंगे? तब जब हम इन पर विचार करेंगे। और इसके बाद इसमें बहुत सारे इस तरह के वाक्य हैं, जो सच पूछिए तो दिल और दिमाग को दोस्तों एकदम से उद्वेलित कर देते, एकदम से उद्वेलित कर देते हैं। मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है क्या फर्क पड़ता है, तू साथ है या साथ नहीं है। जब आप अरिजीत की आवाज में इन शब्दों को ढलता हुआ पाते हैं कि बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है, तो दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि बहुत दूर से किसी के सिसकने की आवाज आ रही हो? अब आपको एक तरफ से म्यूजिक की धुन सुनाई दे रही, इस तरह की धुन सुनाई दे रही है मानो कि किसी मंदिर की गुंबद पे हजारों घंटियां लटकी हुई हो और उन हजारों घंटियों को एक साथ बजा दिया गया है और आपका अंदर गुंजायमान हो रहा है, और उस गुंजायमान के बीच में अचानक अरिजीत की आवाज गुजरती है इन शब्दों के साथ, बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है और क्या फर्क है तू साथ हो या तुम साथ न हो, क्या फर्क है, क्योंकि जो तुम्हारे सपने हैं उन सपनों में मुझे नाराजगी दिखाई दे रही है और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये जो लव्ज हैं, ये सब के सब प्रेम प्यार की जो बातें हैं, जो सपनों की बातें हैं, ये एक प्रकार की धोखेबाजी है। अब आप देखिए दोनों कंट्रास्ट को एक साथ अब ले आइए, तब आपको लगेगा कि बाप रे बाप कैसे लिखा गया है। दोस्तों, आप ये जो गीत लिखा गया है इनके शब्दों को रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। इस शब्द की जगह मैं ये शब्द रखकर देखता हूं, इस शब्द की जगह मैं ये शब्द रखता हूं, और फिर उसको पढ़िए, धुन मिला लीजिए, मात्राएं मिला लीजिए, लेकिन आप देखेंगे कि उसका असर कम हो गया है। तो दोस्तों, ये है दूसरी परत, सेकेंड सरफेस। जब आप इस दूसरी परत पर पहुंचते हैं तो आप देखें कि इसी गीत का जो सौंदर्य बोध है, इसी गीत का की जो मारक क्षमता है, चलिए मैं इसी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हालांकि ये शब्द थोड़ा सा निगेटिव है, कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और मैं चाहूंगा कि मेरी इस बात को सुनने के बाद आप एक बार फिर से गीत को सुने और मैंने जो जो बताया है उन्हें ध्यान में ला करके उन गीतों पर अप्लाई करने की कोशिश करें और फिर मुझे बताएं कि अब कैसा लगा। और दोस्तों, अभी तो दो परत ही हुई हैं, दो परतें और बाकी हैं, यानी कि हमें अभी और गहरे पैठ करना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इस गीत के सौंदर्य को पूरी तरह से आत्मसात कर सकें। नमस्कार।